الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام کو اس مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اور کچھ ایسی باتیں کرنے کی ہے جس سے ہم موٹیویٹ رہیں آج کی رات میں. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرو، تو الحمدللہ کہ ہم یہ آخری 7 راتوں میں ہی داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، وہ نیکی کرنے کا ہو یا گناہ سے بچنے کا ہو. اور گنتی کی چند ایک راتیں ہی رہ گئی ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا تو اب سلسلہ ہے نہیں، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں. اور یاد رکھیے، عبادتوں کی تکلیف، عبادتوں کی مشقت، عبادتوں کی تھکاوٹ یہ یاد بھی نہیں رہے گی، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو آخرت میں انعامات ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ رہتے ہیں قائم. آپ کو کیا یاد ہے کہ پچھلے سال آپ نے جو رات کو جاگ کے عبادت کی تھی، اس کی تھکن کتنی زیادہ تھی؟ نہیں یاد ہوتا. یا کتنی مشکل ہوئی تھی، یا کتنا آپ کے لیے مشقت کا کام تھا؟ نہیں یاد رہتا. ٹھیک ہے، وہ تکلیفیں بھول جاتی ہیں، وہ صرف اتنی دیر کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو ان پہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے نا، وہ ہمیشہ کا ہے. اور چاہیں تو آپ صرف تاک راتوں میں جاگیں اور عبادت کریں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ ہر رات میں ہی جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ کوئی راتیں بھی ان 10 راتوں کی طرح نہیں، پورے سال میں کوئی رات ایسی نہیں جو جیسے یہ 10 راتیں، اور ان میں بھی بیسٹ لیلۃ القدر ہے. تو ساری ہی یہ راتیں بہت مبارک راتیں ہیں. لہذا دیکھیں کہ آج ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، لیکن اجر کتنا بڑا مل جائے گا، کیونکہ رمضان بھی جا رہا ہے، یہ راتیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتائی ہیں، جو اجر میں کئی گنا اضافہ بتایا ہے، ان دنوں کا، ان راتوں کا، وہ تو قائم رہے گا نا. لہذا تھکاوٹ ہوگی، لیکن اتنا اس کو سر پہ سوار نہ کریں کہ ہائے تھک گئے اور نیند ہی نہیں پوری ہو رہی، اور ہم ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا. یہ بھی تو دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے، کوئی ایسا انعام نہیں دے سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، جس کے سائے تلے مسلسل سوار چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، سوار ہے وہ، گھوڑا دوڑاتا رہتا ہے، 100 سال تک چلتا رہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اس کا سایہ. وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی تر و تازگی ایسے ہے جیسے کوئی باغ ہو، اس کے پتے بہترین اور عمدہ، اور اس جنت کے جو پتھر ہیں وہ یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے دودھ کی، شراب کی، شہد کی نہریں بہتی ہیں. اس درخت کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے، اتنی خوبصورت وہ اونٹنیاں ہوں گی. ویسے تو ہم سوچتے ہیں کہ سواری کو کیا دیکھنا اگر اونٹنی کے چہرہ روشن ہے یا کیا ہے یا اس کے اوپر زنجیریں سونے کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہم گاڑیوں کو کتنا دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کیسی گاڑی، حالانکہ پہنچنا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، گاڑی نے چلنا ہی ہے، لیکن پھر بھی سواری کے ساتھ ایک انسان کو محبت ہوتی ہے. تو وہ ایسی اونٹنیاں ہوں گی जिनके बाल रेशम से ज्यादा नरम होंगे, जिन पर याकूत जैसे पालान होंगे, जिन पर रेशमी कपड़ा पड़ा होगा, वो ऊंटनियां उनके सामने पेश की जाएंगी और उनको कहा जाएगा ये सवारियां आपके लिए भिजवाई गई हैं और अल्लाह ताला के दरबार में आपका बुलावा है। ये इन पे सवार होंगे और जानते हैं वो ऊंटनियां जो है वो परिंदों की तरह उड़ेंगी और उनकी स्पीड से उड़ेंगी, इतनी तेज उड़ेंगी। और जन्नती एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे होंगे ऐसे, यानी उनकी ऊंटनियां जो हैं वो यानी उनको उनके जो साथी हैं उनसे अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ऊंटनियां उड़ रही हैं अब इनके जो साथी जिनके साथ ये बैठे हुए थे उनकी भी ऊंटनियां साथ साथ ही हैं। उनके ऊंटनियों के कान से कान भी नहीं मिलेंगे और पूरी फरमाबरदारी के साथ चल रही होंगी, और रास्ते में जो दरख्त आएंगे वो खुद बहुत हट जाएंगे कि किसी को अपने साथी से अलग ना होना पड़े, क्योंकि आपस में बातें भी कर रहे होंगे। यूं ये अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पे अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे उन बंदों को मरहबा हो जो बिन देखे मुझसे डरते थे और मेरी फरमा बरदारी करते थे। तब जन्नती कहेंगे अल्लाह हम तो तेरी इबादत का हक भी नहीं अदा कर सके, ना तेरी पूरी कदर कर सके, हमें इजाजत दे हम तेरे सामने सजदा करें। अल्लाह ताला फरमाएगा ये मेहनत की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह नहीं, ये तो नेमतों राहतों और माला माल होने की जगह है। इबादतों की तकलीफ जाती रही, वो दुनिया में थी, यानी ये जो आप इबादत की थोड़ी बहुत जो तकलीफ सह रहे हैं ना ये दुनिया में है सिर्फ, जन्नत में जाके कोई तकलीफ है ही नहीं। इसलिए आपने नहीं सुना होगा कि जन्नत के बारे में कहा गया कि वहां पे ऐसी मस्जिद होगी और इतनी बड़ी मस्जिद और फला मस्जिद, क्यों नहीं कि वो वहां पे तो ना कोई नमाजें हैं ना कोई सजदे हैं। अब जन्नती अब जाके जो रियलाइज कर रहे हैं ना कि या अल्लाह हम तू वैसी तेरी इबादत कर ही नहीं सके, या अल्लाह जो तूने मुझ हमें अता कर दिया इतना कुछ, हमें तो तेरी जैसी कदर करनी चाहिए थी, वैसे तो हमने की नहीं, अल्लाह हमें इजाजत दे अब हम तेरे आगे सजदा करें। तो अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं अब नहीं जरूरत, ये बातों की जगह है ही नहीं, ये बातों की तकलीफ जाती रही, अब तो मजा करने के दिन है, जो चाहो मांगो पाओगे, तुम में से जो शख्स जो मांगे उसे दिया जाएगा। तो ये मांगेंगे और कम से कम सवाल करने वाला भी ये कहेगा कि अल्लाह ताला तूने दुनिया में जो पैदा किया था जिसमें तेरे बंदे बहुत कुछ मजे करते थे, मैं चाहता हूं कि शुरू दुनिया से आखिर तक दुनिया में जितना कुछ था ना वो सब मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने तो बहुत कम मांगा है, मैंने तुझे ये दे दिया। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिन चीजों तक मेरे बंदों के ख्याल भी नहीं पहुंचे, ख्याल भी नहीं पहुंचे यानी आपकी सोच में भी नहीं है वो चीज, अल्लाह ताला फरमाएगा वो भी इनको दे दो, तो उनको दे दिया जाएगा वो सब कुछ भी, उनकी सब ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। अब आप बताइए कि क्या ये वर्थ है? क्या वर्थ नहीं कि हम इस जन्नत की खातिर ये अगर 2-4 दिन मेहनत कर लेते हैं तो क्या कोई महंगा सौदा है? तो बड़े सस्ता है ना, क्योंकि इट्स वर्थ इट। ये इतनी बड़ी चीज मिल जाना इतनी थोड़ी सी इबादत से, कितने चंद घंटे की होगी, और वहां के इनामात कभी ना खत्म होने वाले, वो खैर वो अबका है, वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाले भी हैं। तो ये रात तो खत्म हो जाएगी लेकिन वो इनामात खत्म नहीं होंगे जो इसकी वजह से मिलेंगे, जो आपको इबादत करने में थोड़ा बहुत भी आपको जो अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ गई, आराम की कुर्बानी देनी पड़ गई, अपना थोड़ा सा अपना अपने वक्त निकाल लिया इसके लिए, तो देखिए कितना कुछ मिल भी तो रहा है। और फिर वहां जो बुलंद दर्जे में लोग होंगे, ऊंचे ऊंचे बालाखानों में होंगे, जो मोती के बने हुए होंगे, जिनके दरवाजे सोने के होंगे, जिनके तख्त याकूत के होंगे, जिनके फर्श जो होंगे वो नरम और मोटे रेशम के होंगे, जिनके मिंबर नूर के होंगे, और आला इलियीन में इनके महल होंगे जो याकूत से बने होंगे। अल्लाह हु अकबर। अब सोचें कि जो महल्लात हैं, वो इस कदर खूबसूरत, उनके जो फर्श हैं, जो उनके ऊपर तख्त हैं, वो उनके ऊपर ये जो जवाहर होते हैं, ज्यूल्स, वो टंगे होंगे, इन पे छतें लूलू की होंगी, उनके ऊपर बुर्ज बने होंगे महलों के ऊपर जो मरजान के होंगे, और वहां पे इनको अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे भी मिलेंगे, तोहफे लाए जाएंगे, और इनके गुलाम होंगे जो इनके लिए सवारियां लेकर खड़े होंगे, ये इन सवारियों पे सवार होके जन्नत में जिधर जाएं घूमते फिरेंगे, और फरिश्ते इनका इस्तकबाल करने के लिए होंगे, हर जगह इस्तकबाल होगा, मुबारकबादें होंगी, फरिश्ते मुसाफा करेंगे, जब अपने घरों में जाएंगे तो वहां पे भी अल्लाह ताला के इनामात ही इनामात होंगे, इनके लिए दो दो जन्नतें होंगी, हरी भरी, हर किस्म के मेवे होंगे, इतना राहत और आराम होगा, और अल्लाह ताला पूछेगा, मेरे प्यारे बंदो, तुमने जो वादे मैंने तुम्हारे साथ किए थे वो सच पाए? क्या तुम खुश हो? वो कहेंगे, अल्लाह ताला हम तो बहुत खुश हैं, बहुत राजी हैं, और दिल से राजी हैं, तू भी हमसे खुश हो जा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मेरी रजा ना होती तो मैं तुम्हें यहां कैसे दाखिल करता? तो मेरी रजा है ही जो तुम यहां पे आए हो, तो तुम खुश रहो और आराम से रहो, और तुम्हें मुबारक हो, तुम फलो फूलो और सुख चैन उठाओ, मेरे ये इनामात ना घटने हैं और ना खत्म होने हैं। और उस वक्त वो कहेंगे, उनकी मुंह से बस यही निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए ही सारी तारीफ है, वही तारीफ के काबिल है जिसने हमारे से ये गम दूर किया और हमें यहां पहुंचा दिया जहां पे कोई तकलीफ नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, ये उसका फजल है। तो वो इतना कदरदान है, इतना कदरदान है कि छोटी छोटी इंसान की एफर्ट को भी कैसे कदरदानी से देखता है, ताकि दुनिया में भी। देखिए, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, उनकी जमातें जो हैं रास्तों में गश्त करती रहती हैं, वो जहां कहीं उनको अल्लाह का जिक्र करने वाले मिलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को बुला बुला के सारे वहां जमा हो जाते हैं, और जिक्र करने वालों के गिरद आसमान तक जमा हो जाते हैं, और जब वो मजलिस खत्म होती है तब ये जाते हैं आसमान की तरफ, यानी उस वक्त तक उस मजलिस में ही रहते हैं जहां पे ये देख रहे हैं ना लोग अल्लाह ताला का जिक्र करें, ये उसको घेरे में रखते हैं, सारे आ जाते हैं वहां पे, जमा हो जाते हैं, जैसे हमें कोई कोई हमारी फेवरेट चीज हो, कहीं कोई ऐसी काम हो रहा है जो हमें बहुत पसंद होता है, तो हम सारे वहां पे हजूम लगा के खड़े हो जाते हैं, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला के जिक्र की मजलिस बहुत पसंद है, वो इधर उधर इसकी तलाश में होते हैं कि हमें कोई ऐसी मजलिस मिल जाए, तो जहां पे मिलती है सारे वहां पे आ मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला जब ये उस अल्लाह ताला के पास आसमान की तरफ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है, हालांकि वो हर चीज को जानता है फिर भी पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं, अल्लाह ताला तेरे बंदे थे, उनकी फलां जमात के पास आए हैं, वो तेरी तस्बीह कर रहे थे, तकबीर बयान करते थे, तहमीद बयान करते थे, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला, ये कहने में मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन लोगों ने मुझे देखा है कभी? वो कहते हैं फरिश्ते, या अल्लाह, देखा तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो मुझे देख लेते तब वो मेरी कितनी तारीफ करते, क्या हाल होता। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जन्नत के अंदर वो जब अल्लाह ताला को देखेंगे और उसके इनामात को देखेंगे तो वो कहेंगे, बस अल्लाह हमें ये इजाजत दे दे, या अल्लाह हम तुझे सजदा करना चाहते हैं, अल्लाह हमने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो कितनी तारीफ के काबिल है, और तू तो ऐसा है, हमने तो तेरी कदर ही नहीं जानी। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब वो मुझे देख लेते तो तब उनका क्या हाल होता, फिर कितनी मेरी तारीफ बयान करते, कितनी मेरी बड़ाइयां बयान करते, और कितनी ज्यादा मेरी इबादत में मशगूल होते, और इससे भी ज्यादा तारीफ करते, तस्बीह करते। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, वो क्या चाहते हैं? वो अर्ज करते हैं, अल्लाह वो जन्नत चाहते हैं। ऐसे हम सवाल करते हैं, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ताला पूछते हैं उन्होंने कोई जन्नत देखी है जो उसका सवाल कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह देखी तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो देख लेते तो उनके शौक का आलम क्या होता, फिर उनकी तलब कितनी ज्यादा होती, क्योंकि अभी तो हमने देखी ही नहीं ना। अब बस सिर्फ मैंने आपको चंद बातें बता दी, ना मैंने देखी ना आपने देखी, बताने वाली को भी उतना ही पता है जितना सुनने वालों को पता है। तो बस हम अल्फाज से पढ़ के ही उसको थोड़ा बहुत अपने जहन में नक्शा ले आते हैं। लेकिन याद रखिए जो नक्शा मेरे और आपके जहन में वो जन्नत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया है कि वो ऐसी जगह है ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे उसका जरा सा भी ख्याल भी गुजरा। तो फिर हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं? इमेजिन तो आप उसी चीज को कर सकते हैं ना, कभी देखा हो। चलो आपने कोई तस्वीर किसी कैलेंडर में ही देख ली हो, या आपने किसी से कोई बात सुनी ली हो, तो फिर ही आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो हम ये सुन भी रहे हैं अल्फाज, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, रियलिटी हम समझ ही नहीं सकते कि ऐसी चीज है जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज हो हम कैसे समझ सकते हैं उसको? तो हमारी सिर्फ सोच इतनी ही हो सकती है जितनी ये दुनिया की चीजें हैं, सिर्फ उसके मुताबिक हमारी सोच वहां तक चल सकती है। तो अब आपको मैं बता दूं वो भाई वहां पे केले होंगे, वहां पे सेब होंगे, वहां पे खजूर होगी, वहां पे अनार होगा, आपके जहन में अपने यहाँ के खजूरें, अनार और दूध की नहरें, और बस दूध यहाँ पे ही जो दूध होता है और यहाँ पे जो शराब होती है, उस तरह की चीजें आपके जहन में आती, क्योंकि वो इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम वहां की चीजों को समझ नहीं सकते। इसलिए हमें बताया गया क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ उन्हीं चीजों को इमेजिन भी कर सकते हैं जिनको हमने यहाँ पे कभी देखा हो। जिस चीज को कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं उसके बारे में, उसकी इमेजिनेशन भी हमारे जहन में नहीं आ सकती। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाएगा कि उन्होंने देखा है कभी जन्नत को? वो कहेंगे अल्लाह देखा तो कभी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा देख लेते तो फिर क्या होता? फिर अल्लाह ताला पूछते हैं अच्छा वो किस चीज से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं या रब वो जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नुम को कभी देखा है? वो कहते हैं या अल्लाह कभी देखा तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो देख लेते तो उसे कितना भागते और कितनी ज्यादा बचने की कोशिश करते, हमारे लिए रातों को उठना कोई मुश्किल ना रहता, क्योंकि तो फिर हमें जहन्नुम से बचने की ऐसी फिक्र हो जाती कि हम उसमें ही पागल हो जाते, हम कुछ भी ना और मांगते, हम बस कहते हैं अल्लाह हमें बस जहन्नुम से बचा ले। अगर हमने देखी होती एक झलक भी उसकी, जैसे कि कयामत के दिन जब जहन्नुम को हशर के मैदान में लाया जाएगा तो क्या हाल होगा? आम लोगों को तो छोड़े, अंबिया का भी क्या हाल होगा? सब घुटनों के बल गिर जाएंगे और नफसी नफसी की पुकार करेंगे। अभी कोई गया नहीं जहन्नुम के अंदर, अभी किसी को जाते हुए देखा भी नहीं कि कोई गिरा हो तो पता चले, अभी सिर्फ जहन्नुम को लाया गया है, उसका शोर सुन रहे, उसका गुस्सा सुन रहे। तो अभी तो बिन देखे हम बस कह देते अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, बस इतने आराम से बोल देते। यानी हमें आइडिया ही नहीं कि वो जहन्नुम कैसी बला है, वो कितनी बुरी चीज है, वो कितना बुरा ठिकाना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो उसको देख लेते तो फिर इससे बचने की कितनी ज्यादा कोशिश करते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अच्छा फरिश्तों तुम गवार हो, मैंने जितने लोग इस मजलिस में थे सबको बख्श दिया, ये अल्लाह ताला की रहमत, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें इंसान की मेहनत कितनी थोड़ी है। क्या कर रहे हैं? एक अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नुम से बचने का सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने सारों को बख्श दिया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अब ये गौर करने की बात है और अल्लाह ताला की रहमत देखें कितनी। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह एक आदमी जो था वो तो इत्तेफाक का नहीं अपनी किसी जरूरत से आया था, वो भी उस मजलिस में आके बैठ गया, यानी उसका कोई काम था, वो चलो काम की गर्ज से आया था, कोई और अपनी जरूरत थी, वो एक्चुअली इस मजलिस का हिस्सा नहीं था, वो वैसे ही आके बैठ गया कि चलो एक मजलिस है तो उसमें बैठ गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जमात इसमें बैठने वाला भी महरूम नहीं है, मैंने उसको भी बख्श दिया। अल्लाह हू अकबर कि ये ऐसी जमात है, अल्लाह ताला को इतनी उनका ये काम पसंद आया कि वो बैठ के अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह हू अकबर कह रहे हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ताला को इतना पसंद है, उनके साथ बैठे हुए इंसान भी महरूम नहीं है। अल्लाह हू अकबर। तो इसलिए अल्लाह ताला की रहमतों को जब इंसान देखता है ना, तो अपनी इबादत और ये अपने छोटे, ये तो बहुत ही मामूली काम है, ये इतने छोटे लगने लगते हैं कि इंसान कहता है कि ये अल्लाह ये तो कुछ भी नहीं है। और मे भी हम आज ना रियलाइज कर रहे हैं, मे भी आज हमें ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाए बगैर जहन्नुम को दिखाए हुए, तो तब हमें रियलाइज होगा कि वो तो दुनिया में हमने कुछ भी नहीं किया, इतना मामूली, और अल्लाह ताला तेरी रहमत और तेरी इनामात कितने बड़े हैं, हम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे, तूने हमें इतना कुछ दे दिया। वो इतने ओवरवेल्म्ड होंगे कि वो इस वजह से सजदा करना चाहेंगे, अब उनका दिल करता कि हम सजदा करें, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं अब नहीं जरूरत है। तो ये दुनिया है सजदे करने की जगह, यहाँ पे सजदे करें और सोचें कि वो क्या जगह होगी कि फिर उस वक्त हम चाहेंगे सजदा करना, उस वक्त नहीं जरूरत होगी, तो आज क्यों ना करें, क्योंकि सजदों की लज्जत भी दुनिया में ही है, वहां पे कोई बातें नहीं, ये रातों को जागना, अपने रब को पुकारना, उसे लौ लगाना, ये इबादत की लज्जत, इसमें भी एक मजा होता है, ये मजे दुनिया में है, वहां पे नहीं है। तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इतना नवाज देता है, उस रब का रहम और करम और उसकी रहमतें कितनी ज्यादा हैं, और वो कितना फयाज है और उसका करम कितना ज्यादा है, और वो कितना गनी है, कितना गनी है, इमेजिन भी नहीं हम कर सकते। इसी वजह से एक हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात के गुनाहगार तौबा कर लें, और रात को अपना हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें। अगर तुमने दिन में कोई गुनाह किए, मैं अल्लाह ताला रात को हाथ फैलाता है, आ जाओ तौबा कर लें, मैं माफ कर दूं, रात को किए दिन को हाथ फैलाता है कि अब रात जो गुनाह कर बैठे हो ना, अब पीछे यहां से अब आ जाओ। अल्लाह अकबर। और ये जो आमालनामा लिखने वाले फरिश्ते हैं, जब ये दिन और रात का नामा आमाल अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाते हैं और पेश करते हैं उसके सामने, जैसे फजर के वक्त और असर के वक्त होता है, तो अल्लाह ताला शुरू और आखिर में जब भलाई पाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम फरिश्तों को गवाह बना बनाता हूँ इस बात पे कि मैंने इनके दरमियान में होने वाले जो भी गुनाह है वो माफ कर दिए। ये बंदा जब सुबह गए तब भी भलाई में था, शाम गए तब भी भलाई में था, तो स्टार्ट और एंड दोनों ही अच्छे हैं, तो इनके बीच में जो भी किया मैंने माफ कर दिया। तो ऐसे रब के साथ आपका वास्ता है, बल्कि कयामत के दिन क्या होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में दाखिल होने वाले लोगों में से दो आदमियों की चीखें इतनी शिद्दत से बुलंद होने लगेंगी, तो अल्लाह ताला फरमाएगा उन दोनों को निकाल के लाओ, बहुत ज्यादा उनकी चीखें होंगी जहन्नुम में। जब वो दोनों निकाले जाएंगे, तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा तुम्हारी चीखों में शिद्दत किस लिए है, तो वो कहेंगे ए अल्लाह हमने ऐसा इसलिए किया ताकि तू हम पे रहम कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे लिए मेरी रहमत यह है कि तुम दोनों जाओ और जहन्नुम में जहां थे वहीं अपने आप को डाल दो। दोनों चलेंगे, उनमें से एक भाग के जाके अपने आप को गिरा देगा जहन्नुम के अंदर, तो अल्लाह ताला आग को उसके लिए ठंडा कर देंगे और सलामती वाले बना देगा। दूसरा वो नहीं भागा, वो खड़ा रहेगा, उसने अपने आप को नहीं डाला। अल्लाह ताला फरमाएगा जैसे तुम्हारे साथी ने अपने आप को आग में डाल दिया, तो तुमने क्यों नहीं डाला अपने आप को, क्या चीज ने तुम्हें रोक दिया। वो कहेगा या रब, अल्लाह हू अकबर, मुझे ये उम्मीद लगी कि तूने मुझे एक दफा निकाल दिया है ना, तो अल्लाह तेरी रहमत इतनी ज्यादा है कि तू मुझे दोबारा जहन्नुम में नहीं लौटाएगा। अल्लाह हु अकबर कि मैंने तेरे बारे में ये सुना हुआ ना कि तू बहुत रहमान और रहीम है। एक दफा तूने मुझे निकाल दिया ना, अब मुझे उम्मीद है कि तू कभी वापस नहीं मुझे डालेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तेरी उम्मीद पूरी कर दी। दोनों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस दिन उसकी रहमत कितनी होगी सोचिए। अल्लाह अकबर, दुनिया में उसकी रहमतों का ये अंदाजा हम कर ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला उस बंदे को जो उस मजलिस के एंड में बैठा हुआ है, अपनी किसी जरूरत से अल्लाह ताला ने उसको भी बख्श दिया और सारी मजलिस को भी बख्श दिया। आखरत में उसकी रहमत के अंदाजे हम कैसे लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या होंगे जब अल्लाह ताला के पास सारी जो 99 रहमतें 99 उसके पास हैं, उसके अलावा वो रहमत भी उसी के पास होगी जो उसने इस वक्त दुनिया में उतार दी। तो वो रब बहुत करीम है, बहुत रहीम है। इसीलिए जब आप दुआ भी मांगे तो ये जहन में सोच के मांगे कि अल्लाह ताला तू बहुत रहीम है, उसको उसके रहम का वास्ता दे। अल्लाह तू बहुत करीम है, बड़ा करम करने वाला है, हम तुझे इसका वास्ता देते हैं। इस तरह से दुआएं मांगे और इस चीज को जहन में रख के मांगे कि अल्लाह तू कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता और तेरी रहमतें हर चीज को अपने घेरे में लिए हैं। तो उसकी रहमत जहन में होगी, तब जब आप मांगेंगे तो आपको मांगने में भी मजा आएगा और आप मांगेंगे भी यकीन के साथ, क्योंकि आपका मामला किसी बखील के साथ नहीं है, वो गनी है। क्या तो इस तरह से अल्लाह ताला से इन रातों में मांगिए और उसकी रहमत को हमेशा सामने रख के मांगे। और इन रातों में तो उसकी रहमत बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। हमारी ये दुआ है कि या अल्लाह जब तू आज की रात अपनी मखलूक के ऊपर नजर डाले तो हम तेरी इबादत में खड़े हों या सजदे में पड़े हों या तेरी तस्बीह बयान कर रहे हों या तेरे कलामे पाक की तिलावत कर रहे हों, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए हमारी नाफिस छोटी छोटी बहुत ही छोटी कोशिशें। ए अल्लाह तो इन्हीं को कबूल फरमा लेना क्योंकि हम खुद छोटे हैं, हमारी कोशिशें भी छोटी, हम खुद नाकिस हैं, हमारी इबादतें भी नाकिस हैं। तो अल्लाह ताला तू इन्हीं को कबूल फरमा लेना अपनी बारगाह में।